प्रवृत्ति में रहते अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए भी स्वस्थिति को कैसे अचल और अडोल बनाए रखे, इस विषय पर अपनी अनुभव युक्त वाणी सुनाएंगे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी। आज का विषय है स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय।
ओम शांति। सभी ने बहुत प्यार से बाबा को पत्र लिख दिया, लिखा सभी ने प्यार के सागर में समाने का बहुत अच्छा अभ्यास। प्रेम पत्र लिख दो और हर संबंध से जो बाबा को प्यार से पत्र लिखते हैं, बाबा उसी संबंध का उनको अनुभव करा देता है। तो सभी ने बहुत अच्छे पत्र लिखे ना, सबने रोज लिखते हैं कि आज ही लिखा? रोज नए नए संबंध से लिखना, एक जैसा नहीं, वैरायटी होगा तो बाबा को पढ़ने में मजा आएगा। एक जगह पर मैं गया था, एक बहन रोज बाबा को नए नए रूप से पत्र लिखती थी, बड़े अच्छे उसके अनुभव थे, और कहती थी जिस संबंध से मैं पत्र लिखती हूँ बाबा उसी संबंध का अनुभव किसी न किसी रूप से बाबा मुझे कराता है। तो जिस दिन मैं पहुंचा था, हमने कहा आज क्या बाबा ने को पत्र लिखा तुमने? बोला आप अचानक आए ना, तो मैंने बाबा को लिखा था, बाबा आपकी ये भंडारी भरपूर है, आप इस भंडारी को लेने के लिए किसी को भेजो ना मेरे पास। तो उस दिन ही मैं पहुंचा और अपनी भंडारी खोली, मेरे सामने कहती है सब बाबा के लिए आज लिखा था मैंने और आपको बाबा ने भेजा है। फिर उसने मुझे डायरी अपनी दिखाई कि रोज नए संबंध से मैं बाबा को याद करती हूँ। बहुत बढ़िया पत्र, भिन्न भिन्न रूप से रोज नए नए संबंध से, कभी साजन है कभी सर्जन है, कभी बाबा तो सब कुछ बन जाता है ना, कभी धोबी बन जाता है, कभी भोला भंडारी बन जाता है, कभी धर्मराज भी बन जाता है। तो बाबा को भिन्न भिन्न रूप से जब हम याद करते हैं तो बाबा के सब संबंधों का अनुभव बहुत आगे बढ़ाता है। बाकी आज का जो विषय है उसकी पूर्व तैयारियां तो आप सबने कर ली हैं। स्वस्थिति को बनाने के लिए अपनी अच्छे से अच्छी अवस्था बने, उसके लिए आपने खूब भट्टी की है। लेकिन जब कोई संकल्प किए जाते हैं तो बाबा कहता है बच्चे माया भी देखती है, माया भी आपके पीछे पीछे रहती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जैसे बाबा का कैमरा मेरे ऊपर रहता है, कहता ना मैं कभी भी आपको देख सकता हूँ, क्या कर रहे हो, किस स्थिति में हो, बाबा का कैमरा सदा हमारे पर रहता है। ऐसे माया भी अपना कैमरा लगा करके रखती है, जरा भी कोई अलबेले हो गए तो माया फिर अटैक कर लेती है। इसलिए स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बन जाए, जो परिस्थितियां कैसी भी आए, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग के अंदर अति हर क्षेत्र में होनी है, क्योंकि बिना अति के अंत नहीं होता और अंत के बिना आदि नहीं होती। तो जब हम अपनी अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बना रहे हैं तो परिस्थितियां भी और बड़े रूप में, विकराल रूप में हमारे सामने आएंगी। और प्रवृत्ति में तो आप सब अनुभव करते ही होंगे कि भिन्न भिन्न रूप से परिस्थितियां अपना वार करना चाहती हैं, लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी से अच्छी है वो परिस्थितियों की परवाह नहीं करते। बातें आती हैं, चली जाती हैं। हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी एक शब्द बहुत बार बार उच्चारण करती थी कि मैं तो सदा अपने आप को समझती हूँ कि मैं पेपर हाल में रहती हूँ। उन स्टूडेंट्स का पेपर तो साल में 3 मास, 6 मास, 9 मास, 12 मास के बाद होता है, लेकिन हमारा तो हर समय पेपर है। यहाँ से बाहर निकलेंगे पेपर आ सकता है, कोई भी रूप में आ सकता है। पता चल जाता है कि कैसी स्थिति है इसकी। तो पर स्थिति माना ही जो दूसरे के द्वारा आती, पर के द्वारा आती है। स्व स्थिति माना ही स्वयं की आत्मिक स्थिति है। तो परिस्थितियां या तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आएंगी या प्रकृति के द्वारा आएंगी, किसी पदार्थ के द्वारा आ सकती हैं। स्वस्थिति जमाने के लिए अगर हम सबने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो परिस्थिति कैसी भी हो, ऐसे लगता है तो खेल है, नथिंग न्यू है। जैसे आपने अभी देखा हमारी दादी के सामने, जानकी दादी के सामने इतनी बड़ी शारीरिक परिस्थिति ही कहें, बीमारी आई, सोचा नहीं था कि कभी मैं बिस्तर पर लेटूंगी। कहती थी ऐसे ही चलते चलते हम चले जाएंगे ब्रह्मा बाबा जैसे, लेकिन उनके सामने भी बड़ी परिस्थिति आई है शरीर की, और उन्होंने कैसे ज्ञान युक्त होकर के, कभी उसका वर्णन नहीं किया, कभी प्रश्न नहीं किया क्यों क्या कैसे, ड्रामा बना बनाया है, नथिंग न्यू, इसमें भी कई रहस्य हैं। और देखो ड्रामा कितना विचित्र था, जब तक शांति वन में रही तब तक बिस्तर पर रही, अहमदाबाद गई तो भी डॉक्टर्स ने कहा और थोड़ा 15 दिन रेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बॉम्बे में पहुंचते ही डॉक्टर्स ने कहा दादी को क्यों लिटाया है, उठा दो, बिठाओ इनको, कुछ नहीं हुआ है इनको। और इतना बल भर दिया जो जाते ही दादी को 2 घंटा बिठा दिया कुर्सी पर, फिर चलना सिखाया, चलो बैठो नहीं, लेटना नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और 8 दिन के अंदर दादी को तैयार करके सेंटर पर भेज दिया। तो परिस्थिति बहुत बड़ी थी, लगता था कि पता नहीं इस एज के अंदर कैसे रिकवरी होगी, लेकिन उनकी जो अपनी स्वस्थिति थी और इतने सब ब्राह्मण आत्माओं का, दुआओं का सहयोग था, स्नेह था, सकाश थी, उस सब के बल से उस आत्मा ने इस परिस्थिति पर बहुत सहज विजय प्राप्त करके दिखाई, हलचल में नहीं आई। कईयों के आगे कोई भी पेपर छोटा भी आता है, क्यों क्या कैसे, मेरे सामने ही क्यों आया, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो बाबा के लिए इतना करता हूँ, ये पेपर मेरे सामने आ गया, अब क्या करूँ। तो बाबा कई बार ये कहते हैं कि कई बच्चे उस बात को सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं। होती बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सोचने से और वर्णन करने से वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए बच्चे सोचो मत ज्यादा, नथिंग न्यू, इस ड्रामा के अंदर ये जो नूंद है वो आई है और खत्म हो जाएगी। कोई भी पेपर सदा काल नहीं चलता, पेपर आता है पार हो जाता है। हम अगर अपनी स्थिति को हलचल में ले आते हैं, डगमग होते हैं, तो तो परिस्थिति बहुत विकराल रूप में और बहुत समय तक सामना करती है। इसलिए बाबा ने हम सबको कई साधन बताए हैं अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएं, और आंतरिक शक्तियों को विकसित करने के लिए हरेक ब्राह्मण आत्मा को बहुत सुंदर गोल्डन चांस है इस समय। आगे चल करके चांस रहेंगे या नहीं पता नहीं है, लेकिन इस समय हम सब जानते हैं कि हम जैसा चाहें ऐसा अपने आप को बना सकते हैं। अब इसके लिए कुछ बातें मैं आपके ध्यान पर देता हूं। सबसे पहले एक अभ्यास चाहिए स्वचिंतन करने का। कईयों को परचिंतन करने का बहुत अच्छा अभ्यास होता है, इसने ये किया, उसने ये किया, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ वैसे हुआ, और बहुत समय उसके पीछे अपना नष्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनानी है तो सदा ध्यान रहे मुझे स्वचिंतन करना है। मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं बाबा के पास क्यों आया हूँ। हम लोगों ने कुछ दिन पहले मधुबन में एक भट्टी की थी, ने सब अपना अपना लक्ष्य लिखो कि मैं बाबा के पास क्यों आया, किस लिए यहाँ आया, क्यों अपनी जीवन हमने समर्पित की। खाना पीना सोना कपड़े लत्ते तो सब बाहर भी हम कमा के खा सकते थे, कर सकते थे। जैसे कल बाबा कह रहे थे मुरली में, बच्चे रोटी बनाई, सब्जी काट दी, झाड़ू लगा दी, सफाई कर दी, स्थूल काम कर लिए, क्या इसीलिए तुम समर्पित हुए हो, तुमको तो बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो हम सब बाबा के पास क्यों आए हैं, किस लिए बाबा ने हमें चुना है, क्यों बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, इतनी करोड़ों आत्माओं में से हम बच्चों को क्यों सेलेक्ट किया, कभी बैठ करके चिंतन किया है। ये भी कभी पत्र लिखना अपने आप को, अपने आप से बात करना कि बाबा ने मुझे क्यों सेलेक्ट किया है, किस लिए चुना है, क्या विशेषता मेरी देखी है जो बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ी। तो जब ये चिंतन चलता है, स्वचिंतन चलता है, तो जो छोटी मोटी कमी कमजोरी संस्कार परेशान करते हैं नेचुरल ध्यान जाता है, ये ब्राह्मण जीवन के लिए शोभा नहीं देते, ये नहीं होने चाहिए। तो स्वचिंतन करने से धीरे धीरे आत्मा में स्वतः परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ दूसरा एक बड़ा अच्छा शब्द है, भक्ति का ही है, लेकिन बाबा भी कई बार कहते हैं, बच्चे स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। स्वाध्याय संस्था भी बनाई है, लेकिन वो अध्याय नहीं, स्वयं स्वयं को पढ़ाना। जैसे अध्ययन किया जाता है ऐसे ही मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन खुद खुद को पढ़ाना। हमारी दीदी जी हमेशा एक बात कहती थी, सबसे बड़ा शिक्षक वो है जो अपने आप को पढ़ाना जानता है। ये है स्वाध्याय करना, स्वयं स्वयं को पढ़ाना, स्वयं स्वयं को शिक्षित करना कि मुझे क्या करना है। और बार बार बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अगर माया के गले को काटना है तो स्वदर्शन चक्र धारी बनो, स्वदर्शन करो, परदर्शन नहीं। और स्वदर्शन में भी गिरती कला का दर्शन नहीं करना, अपने अनादि स्वरूप का दर्शन करो, मैं अनादि स्वरूप में क्या थी, फिर आदि स्वरूप मेरा कितना श्रेष्ठ और पवित्र था, पूज्य था, और फिर हम जब देव रूप में नीचे उतरे तो भी हमारी किस रूप में पूजा हो रही है, कितनी भक्तों की हमारी मूर्तियों के द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। और लास्ट में ब्राह्मण बने तो बाबा ने कैसे सेलेक्ट किया और अपना बनाकर बाप टीचर सतगुरु रूप से हम सब की पालना कर रहे हैं। और फिर से हम सो हम का मंत्र देकर इस ब्राह्मण को फरिश्ता सो देवता बना रहे हैं। तो ये सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे जिससे अपना ऊंचा स्वमान याद रहे। तो चौथी बात है, रोज कोई न कोई अच्छे से अच्छा स्वमान लेकर के पुरुषार्थ किया जाए तो स्थिति बहुत अच्छी बनती जाती है। मूल 5 समान अगर आप स्मृति में सारे दिन की दिनचर्या में ले आए तो मैं समझता हूँ समान की स्मृति, समान का अर्थ तो सब जानते हैं, स्वयं स्वयं को मान देना, स्वमान, दूसरा मुझे मान दे, मैं उसकी इच्छा रखूं, मैं उसके कारण किसी के आगे पीछे घूमूं, मिले या न मिले। आज तक मेरा तो ये अनुभव नहीं रहा कि मैं किसी सीट के लिए, किसी क्लास के लिए, किसी चीज के लिए किसी के पीछे लगा हूं। मुझे दो, मुझे चांस मिलना चाहिए, बाबा अपने आप देगा। अगर हम योग्य बने हैं, अगर हमने अपने चिंतन को अच्छा रखा है, अपनी स्थिति को अच्छा रखा है, तो अपने आप बाबा इससे सेवा कराएगा, हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करे, उसमें कभी आनाकानी हम न करें। बहुत ऊंचे सम्मान में रहो कि बाबा ने मुझे अपने सिर पर बिठाया और कहता है बच्चे जितने मेरे टाइटल हैं उतने आप बच्चों के समान हैं। अब बाबा के कितने अनगिनत टाइटल हैं, आप मंदिर में जाओ, बाबा के मंदिर में पहुंचो, देखो कितने टाइटल्स एक एक मंदिर की एक एक मूर्ति के ऊपर, बाबा के एक एक लिंग पर उनका नया नया नाम लिखा हुआ है। जो कार्य बाबा ने इस समय किए हैं उन सब कर्तव्यों की यादगार में बाबा के जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं। अगर हम बाबा के टाइटल्स को याद करते और उस सम्मान में स्थित होते कि बाबा ने कहा बच्चे तुम इसके मास्टर हो, तो 5 मूल सम्मान याद रखो। पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तियां मेरा कहना आर्डर प्रमाण माने, ऐसा नहीं समय है सहन करने का और उस समय हम सामना कर रहे हैं, उस समय हम समा रहे हैं। समय अनुसार हर शक्ति हमारा आर्डर माने, उसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपनी सीट पर रह करके फिर आर्डर करो। सीट से उतर करके कोई आर्डर करता है तो उसके आर्डर को कोई नहीं मानता। अगर वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर है, गवर्नर की सीट पर है, प्रेसिडेंट की सीट पर है, तो उस सीट के आधार से उसके कार्य करते हैं, उसका कहना मानते हैं। अगर वो सीट से उतर जाता है फिर कुछ कहेगा तो कोई सुनेगा नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, एक बहुत ऊंची स्टेज वो सीट बाबा ने हमको दी है और इस पर बैठ करके अपनी शक्तियों को आर्डर चलाओ। जरूरत है, कल बाबा कह रहे थे अगर जरूरत है शीतल देवी बनने की, शीतला देवी बन जाओ। जरूरत है ज्वाला देवी बनने की, ऐसे संस्कार हैं उनको जलाना है, ज्वाला स्वरूप बन जाओ। योग है जो शीतल भी बना देता है, ज्वाला स्वरूप भी बना देता है, बाबा की याद ही। तो जब हम इस सम्मान में रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बाबा ने मुझे ये टाइटल दिया है बच्चे तुम ऑलमाइटी हो, अपनी शक्तियों को यूज करो। जिस शक्ति की जरूरत हम समझते हैं, परिस्थिति इतनी विकराल आ गई, ऐसी ऐसी आती है, मान लो अचानक शरीर परिवार का कोई सदस्य अचानक शरीर छोड़ता है। आजकल कलयुग के अंदर कोई का भरोसा तो नहीं होता, मेरे सामने ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, अचानक एक ही बेटा चला गया, इतना बड़ा जैसे दुख का पहाड़ उस परिवार के ऊपर गिर जाता। ज्ञानी परिवार है, बहुत समय से सहयोगी है, तन मन धन बाबा के कार्य में लगा रहा है, और ऐसा जब पेपर आ जाता है तो उसका सारा परिवार हिला देता और हिल जाता है। समाज वाले भी कहते हैं देखा भगवान का बना फिर भी तुम्हारा कोई रक्षक नहीं, कोई ने रक्षा नहीं की, उसके निश्चय को हिलाते हैं। लेकिन अगर उसने स्थिति अच्छी बनाई है, तो मुझे एक माता का अनुभव याद है, उसका बेटा पढ़ने गया था और दोस्तों के साथ सागर में स्नान करने चला गया और स्नान करते करते कोई ऐसी लहर आई जो उस लहर के साथ बह गया, चला गया। बड़ी मुश्किल से गोताखोरों ने उसको ढूंढ करके निकाला, जब तक वो शरीर छोड़ चुका था। अब जब उसको लाया गया घर में उसकी बॉडी को, पूरे घर में मोहल्ले में इतना हाहाकार, और वो माता जी इतनी निश्चिंत होके बाबा की याद में एकदम प्यार में उसके स्नेह में बाबा के साथ थे। इतनी अच्छी स्थिति उन्होंने जमाई थी ज्ञान और योग से, ये तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कोई किसी समय भी जा सकता है, इसका इतना ही मेरे साथ पार्ट था। ज्ञान योग से अच्छी स्थिति की नींव पक्की की थी। जब वो बाडी आई तो लोगों ने कहा अगर ये माता रोएगी नहीं तो इसको शायद शौक लग जाएगी, गुमसुम हो जाएगी, इसको रुलाने की कोशिश की। सब अड़ोसी पड़ोसी आए रुलाने लगे कि रो लेगी तो हल्की हो जाएगी। और वो कहे नहीं मेरे को कुछ नहीं कहो, मुझे बाबा को याद करने दो, आप लोग जो करना करो मुझे भगवान के पास रहने दो। बहुत अच्छी स्थिति में एकदम साइलेंस में उस सारी सीन को उसने साक्षी होकर के देखा। और जब पूरा हो गया, सब चले गए, संस्कार हो गया बच्चे का, उसके बाद लोगों को लगा कि ये सचमुच शक्ति अवतार है, ये शक्ति इसको दी किसने, कहां से आई, ऐसे कलयुग में ऐसे समय में इतने बड़े परिस्थिति रूपी पेपर को इसने कैसे पार किया, उसका कितना परिवार, मैं समझता हूं मारवाड़ी परिवार था, सैकड़ों लोक संबंधी आए थे, सबने कोर्स किया, सबने ज्ञान सुना कि ऐसा पेपर अगर आए और इसमें पार हो जाए तो ये बाबा की भगवान की शक्ति है और कोई इंसान की नहीं है। तो ऐसे ऐसी परिस्थितियां कलयुग के अंत में अभी बहुत तेज गति से, तीव्र गति से किसी न किसी रूप में आती हैं। लेकिन अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत है, बहुत अच्छे हम समान में रहते हैं, तो उसका सामना भी कर सकते हैं, उसी इनको हम सहन भी कर सकते हैं, उसको पार भी कर सकते हैं। आ गया पेपर, कईयों के आगे अचानक धन का पेपर आ जाता है, सब प्रकार के साधन हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन अचानक कोई देवाला निकल गया, अचानक कोई बात हो गई, बेचारा परेशान हो जाता है, अब क्या करूं। लोग भी कहते हैं देखा तुमने भगवान के लिए इतना किया, तुमको भगवान ने मदद नहीं की। लेकिन वह चल अडोल है, जानता है भगवान कहीं भी रहेंगे दो रोटी खिलाएगा, और नहीं भी होगा तो बाबा वतन में बुला के खिलाएगा, बच्चे तुम निश्चिंत रहो। अब उसने अपने उस परिस्थिति को ज्ञान और योग की शक्ति से पार कर लिया। लोग देखते हैं कहते हैं ये तो कलयुग में ऐसे बनना, पत्थर दिल हो जाना, ये तो बहुत बड़ा पेपर है, कैसे पार कर लिया। और बाबा के बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते पार हो गए, पार हो गए, बीत गई बात। तो कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर आप अपने ऊंचे सामान में स्थित रहते हैं तो परिस्थितियां ऐसे लगती बहुत छोटी हैं। जैसे कोई उड़ती कला में आज प्लेन से उड़ता है, जाता है कहीं भी, तो नीचे कितना बड़ी पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, कोई भी रुकावट आने वाले सीन हो, लेकिन उड़ने वाला तो यहां से उड़ा और वहीं उतरा जा करके, उसको कुछ पता नहीं है। उसके लिए अगर वो कहीं झांक के इधर उधर देखता भी है तो बड़े बड़े शहर बहुत छोटे छोटे चींटी जितने दिखाई देते, बहुत बड़े बड़े पहाड़ ऐसे लगते जैसे कोई खिलौने हैं। तो बाबा भी अपने बच्चों को ये कह रहे हैं, बच्चे भले पहाड़ कितना भी बड़ा परिस्थिति का हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्थिति ऊंची है, तुम उड़ती कला की स्टेज पर स्थित रहते हो, तो ये सब ऐसे लगेगा ये तो बहुत सहज है, इसको पार करना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे पार हो जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, जंप देने की भी बात नहीं, जंप देने में भी सांस फूल सकती है, उड़ करके ऐसे चले जाएंगे। तो बाबा ने अपने बच्चों को सब उड़ने के पंख दिए हैं। और इसके लिए पांचवी एक बात याद रखो, हमेशा स्वराज्य का तिलक लगा करके रखना, मैं आत्मा राजा हूं, प्रजा नहीं हूं। बार बार अभ्यास करो, मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, मैं मन और बुद्धि का भी मालिक हूं, ये मन भी मेरे सिवाय कहीं नहीं जा सकता, जैसा मैं सोचूं वही संकल्प रचेगा। तो जब मन बुद्धि और इन स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य होता है, दूसरों पर राज्य करना सहज है, लेकिन हम अपने ऊपर राज्य करना सीख जाए। परिवार में हम सब दूसरों को अपने आर्डर के अनुसार चलाना चाहते हैं। कई माँ बाप की एक अपेक्षा रहती है कि अगर मैं ज्ञानी हूं, मैं इतना अच्छा चरित्रवान हूं, तो मेरे बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। और अगर वो नहीं होते कोई संग दोष के कारण या कोई संस्कार के कारण, कोई हिसाब किताब के कारण, वो कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो माँ बाप सदा दुखी होते हैं और उनको लगता है कि मैं कुछ करूं इनके लिए। ठीक है, शुभ भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन शुभ भावनाओं का मतलब ये नहीं है कि उनके किसी भी चरित्र को देख करके आप दुखी होते रहे, अशांत होते रहे और अंदर अंदर गुस्सा आता रहे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस कैसे ठीक करूं। बाबा कहता है जितना हो सकता है अपने फर्ज को निभाओ। फर्ज को निभाना है लेकिन अधिकार नहीं रखना है। आजकल अधिकार पर कोई भी चलने वाला नहीं, आर्डर कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए हम सब अपने राजा बने, दूसरों पर राज्य करने के पहले अपने मन बुद्धि पर और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करें। चार प्रकार के मैं संयम आपको बताता हूँ। पांच मुख्य धारणाएं हैं, स्वचिंतन, स्वाध्याय, स्वदर्शन, स्वमान और स्वराज्य अधिकारी। और इसी प्रकार चार संयम अगर हम पालन कर रहे हैं, आप देखेंगे आपकी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची बनती जाएगी। पहला एक संयम जो सदा ध्यान रहे, बाबा ने हमको इंद्रिय संयम सिखाया है। और इंद्रिय संयम के अंदर मूल जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनसे हमारा सदा ही संपर्क रहा है, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत आधार है इनके ऊपर। एक आंख, एक जबान। जबान दो कार्य करती है, अगर उस पर हमारा संयम नहीं है या तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा या संबंध बिगड़ जाएंगे। जबान पर अगर संयम नहीं है, अपना नियंत्रण नहीं है, उसको ठीक तरह से प्रयोग नहीं किया जाता, अधिक चटपटा, अधिक प्रकार की वैरायटी भोजन खाने की, खिलाने की बहुत इंटरेस्ट है और उस पर चलायमानी होती है जबान की, तो जबान स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। और जो बोलने का तरीका है, अगर जबान से कोई भी एक कटु वचन भी निकल गया, एक ऐसा साधारण शब्द भी निकल गया, तो हमारे संबंध सदा बिगड़ सकते हैं। इसलिए इंद्रिय संयम के अंदर जैसे बाबा अपनी मुरलियों में आंखों पर संयम के लिए बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे आंखें बड़ा धोखा देती, सदा ध्यान रखो कि आंखें सिविल रहे, क्रिमिनल न बने। इसलिए इस देह को देखते हुए इस भ्रकुटि को, आसन को, आत्मा के आसन को देखो, अकाल तख्त को देखो, ये अभ्यास करो। आंखें धोखा नहीं देंगी, नहीं तो आंखें हमेशा किसी न किसी के या तो रूप पर या पैसे पर, रूप या रुपया, उनके पीछे ही जाती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि मुझे तो बाबा ने अकाल तख्त नसीन बनाया है और कहा है बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर से चलाओ, जो देखना वो देखो, जितना बोलना है उतना बोलो, जहां सुनना है वो सुनो, नहीं सुनना तो कान बंद कर दो। अगर इन सब स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर हमारा संयम होगा तो हमारी स्व स्थिति बहुत अच्छी बनती जाएगी। स्थिति को डगमग करने वाली यही इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों पर अगर हमने संयम कर लिया तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से अच्छी स्थिति में हम रह सकते हैं। दूसरा संयम है अपने विचारों पर, विचार संयम जिसको कहते हैं। जो हमारे संकल्प चलते हैं, चिंतन चलते हैं, कई बार वो अनलिमिटेड होते हैं। कोई छोटी सी बात आ गई, सोचने लगे, सोचते 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 घंटों बीत जाते, रात बीत जाती, और वो संकल्प छोड़ते नहीं है पीछा। लेकिन उन पर कंट्रोल करना ये महान आत्मा का कार्य है। कैसे भी विचार हो, उनको नेगेटिव को पॉजिटिव रूप दे करके, साधारणता को भी अच्छे विचारों में, नुकसान वाली दृश्य को भी अच्छे दृश्य में बदल करके, परिवर्तन करके, कोई भी दृश्य, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति देखो, लेकिन उसके विषय में कभी भी ऐसे विचार न चलें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको बाबा कहते हैं ये व्यर्थ की क्यों है। व्यर्थ की क्यों, क्या की क्यों नहीं लगाओ, काका काका नहीं करो तो कौवे करते हैं, तुम नहीं करो, फुल स्टॉप। हर दृश्य में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए विचारों को संयमित, संयम पूर्वक चलाने के लिए हर सीन को बहुत साक्षी होकर के देखो और कल्याण की बिंदी लगा दो। हर बात में कुछ न कुछ रहस्य है, कोई न कोई कल्याण है, इसलिए मुझे बाबा ने इसके विषय में सोचने की मना की है। नहीं सोचना मुझे, मुझे क्या करना है, बस मुझे अच्छे से अच्छा सोच करके बहुत अच्छे चिंतन में रहने का अभ्यास करना है। एक बहुत पॉजिटिव ओरा बनाओ, अपने चारों ओर इतना अच्छा आभा मंडल हो जो कोई भी आत्माएं जो इस वायुमंडल के अंदर बहुत हैं भटकती हुई आत्माएं, आपके ओरे को छेद करके प्रवेश न कर सके। और वो ओरा जो बाबा कहते हैं ना लाइट की ड्रेस पहनो, वो लाइट की ड्रेस क्या है, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लाइट की ड्रेस क्या है, ये तो ड्रेस हम जानते हैं पहन लेते फट से, लेकिन वो लाइट की ड्रेस अच्छे शुद्ध संकल्पों से निर्माण होती है, बहुत पॉजिटिव अच्छे संकल्प, खुशी के, नशे के, उमंग के संकल्प जब उत्पन्न होते हैं बहुत आत्मा लाइट हो जाती है और चारों तरफ से ऐसे लगता है एक बहुत सुंदर आभा मंडल है लाइट का, जिस आभा मंडल को कोई भी अशुद्ध वृत्ति वाला प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर नहीं जा सकता। कितना भी मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंत्र, आजकल की लास्ट विद्या है, कोई कोई मुझे फोन करते हैं पूछते हैं क्या ये इसका प्रभाव पड़ता है क्या, हमने कहा यदि आपने अपना सुरक्षा कवच नहीं पहना है तो पड़ सकता है, और अगर आपने सुरक्षा कवच पहना है रोज अमृत वेले उठ करके बाबा से लिया लाइट का ड्रेस, आओ बाबा इस शरीर के चारों लाइट की ड्रेस पहना दो, बहुत शुद्ध संकल्प करके बहुत अच्छे लाइट की ड्रेस में रहो, कोई कुछ भी करे हमारे ऊपर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान ये रखना, आजकल एक फैशन हो गया है, बताऊं क्या फैशन है, हम लोगों ने बाहर तो खाना पीना बंद कर दिया, नहीं खाते हैं, लेकिन अपने पास भी कई प्रकार की पार्टियां चलती रहती, आज उसने पार्टी की, आज उसने पार्टी की, आज उसने पार्टी किया, उसकी धारणाएं क्या हैं, उसकी मनोवृत्तियां क्या हैं, उसकी कमाई का सोर्स क्या है, वो पैसा कहां से आ रहा है, कई प्रकार के प्रभाव आत्माओं के ऊपर पड़ रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं समझती हैं तो होना ही चाहिए, परिवार है, संगठन है, अगर किसी ने बुलाया है हम नहीं जाएंगे इस पार्टी में तो खराब लगेगा, लेकिन जितना हो सके ये सब शौक नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अधिकतर कोई भी प्रभाव अशुद्धता का खान पान से पड़ता है। हम लोग कहते हैं हम बाहर की चीज नहीं खाते हैं, और आज कहते हैं सब चीजें अनटच आती हैं, जैसे बिस्कुट नहीं खाते, पहले नहीं खाते थे अभी खाने लगे, क्यों खाते हैं भाई, मशीन से बना ना अनटच है, पहले बाहर की आइसक्रीम नहीं खाते थे अभी समझते अनटच है, कंपनी से एकदम ऐसे निकलती कोई का हाथ नहीं लगता, खा लो। धीरे धीरे हमारे जो नियम थे मर्यादाएं थी वो हमने लूज कर दी, लेकिन कई प्रकार के वार खिलाने पिलाने से किसी भी प्रकार की भावना से आत्माएं अपना अटैक कर देती, कहीं ईर्ष्या होती है, कहीं किसी भी प्रकार का द्वेष भावना होती है, घृणा भावना होती है, इसलिए बाबा कहता बच्चे ये अधिक शौक नहीं रखो, बहुत सीमित जीवन जियो। बाबा ने दो रोटी खाने की छुट्टी दी, खाओ शरीर को जितना चाहिए, कहते हैं इस घोड़े को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना चारा दो, लेकिन उसके पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करो। तो चिंतन के साथ साथ समय का बहुत संयम चाहिए। तीसरा संयम है समय का, संगम का समय बड़ा अनमोल है, एक एक पल अनमोल है, इसलिए कभी भी साधारणता में हंसने बहलने में पार्टी पिकनिक में इधर उधर की बातों में इधर उधर के लेन देन में ये समय न चला जाए। कई बार हम संगठन करते हैं बहुत अच्छे भावना से करते हैं कि हम आपस में मिलेंगे, रूरिहान करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, और चर्चा करते करते धीरे धीरे उसके बीच में जब माया घुसती है, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, इस सेंटर पर ऐसा हुआ, उस बहन ने ये किया, उसी ज्ञान के बीच में माया अपना रूप दिखा देती है। धीरे धीरे उन्नति की बात करते करते पर चिंतन पर दर्शन पर मत अनेक प्रकार से माया प्रवेश कर जाती है, समय व्यर्थ जाता है। इसलिए संगम के समय को केवल ज्ञान और योग में, अपनी उन्नति के चिंतन और साधन में बाबा ने हमको बहुत अच्छा बिजी करने का साधन दिया है। मेरे पास बहुत साधन है, आपके पास है या नहीं? इतनी अच्छी बाबा की ज्ञानामृत निकलती हैं, पुस्तकें निकलती हैं, साहित्य इतना अच्छा है, मुरलियां हैं, इतनी क्लासेज हैं। जब समय मिलता है अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा चिंतन करो, अच्छे गीत सुनो, अच्छे विचारों में रमण करने की आदत डालो। समय सफल लगे, ऐसा नहीं लगे तो पास कर रहे हैं हम, समय पास हो रहा है ये नहीं, समय सफल हो रहा है। अच्छे अच्छे चिंतन, लिखने की आदत है अच्छे अच्छे लेख लिखो, जो अच्छा चिंतन चलता लिख डालो। बिजी करने के कई तरीके हैं, लेकिन बिजी नहीं है इसलिए समय को कैसे पास करें, तो चलो इधर फोन कर लिया, इससे बात कर लिया, इसके साथ पहुंच गए, पार्टी में चले गए, तो ये समय बहुत संगम का व्यर्थ जाता है। सोचना इस पर, विचार करना। स्वस्थिति को जमाने वाली आत्माएं ऐसी बातों में अपने समय को व्यर्थ नहीं करती। ध्यान है कि मेरी स्थिति अच्छे से अच्छी बने तो संगम का समय बड़ा अनमोल है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए, कोई भी सेकंड ये व्यर्थ जा रहा ऐसा न हो। चौथा संयम इस समय के अनुसार बहुत जरूरी है, धन का अर्थ संयम। क्योंकि धन जो बाबा ने दिया है ये संगम पर बहुत जरूरी भी है, ये माया नहीं है। कहते धन बड़ी माया है, दुनिया के अंदर तो धन को माया कहा है, सन्यासियों ने माया कहा है। बाबा कहता है धन एक संपत्ति है और इस जीवन निर्वाह के लिए संपत्ति जरूरी है। सतयुग में अथाह संपत्ति थी लेकिन उसका सदुपयोग था। कलयुग के अंदर अगर किसी के पास संपत्ति ज्यादा हो गई तो बाबा कहते हैं जिसके पास धन ज्यादा है वो सबसे ज्यादा पापी है, बाबा के शब्द हैं, क्योंकि वो उस धन को गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। वो जो चाहता है वो कर लेता है, उल्टे कर्म करता है, करा देता है। बाबा ने हमें जो धन दिया है ये बाबा की अमानत है, इसको बहुत संयम से जो जरूरी है वो खर्च करो। बाबा ने नहीं कहा कंजूस बन जाओ, घर के लिए, परिवार के लिए, कभी शादी ब्याह है उसमें जो जरूरी है वो खर्च करो, दिखावा नहीं करो। खर्च करने की कभी मना नहीं की बाबा ने, लेकिन 100 में अगर इसने इतना शादी में खर्चा किया है तो मैं कोई कम हूं क्या? मैं भी ऐसे पंडाल में करूंगा, मैं भी ऐसी होटल में करूंगा, मैं भी ऐसी ऐसी पार्टी दूंगा। बाबा कहता तुम ब्राह्मण आत्माएं संगम पर वनवाह में हो, कम खर्च में काम उतार दो, जरूरी है करना पड़ेगा वो करो, लेकिन दिखावा नहीं। किसको दिखा रहे हो, किस लिए खर्च करो व्यर्थ? तो कम से कम खर्च हो और बाबा के कार्य में, स्थापना के कार्य में, जो आज बाबा ने कहा ना, जो स्थापना के कार्य में अंगुली देता है उनको, उनके लिए मैं गारंटी करता हूं 21 जन्मों के लिए वो मालामाल बन जाएगा, राज्य अधिकारी बन जाएगा। तो बाबा के कार्य में सहयोग में लगे, हमारा तन मन धन समय सब बाबा के कार्य में सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए, इसलिए धन को बहुत संयम से यूज करना है। खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं है, परिवार को चलाने में कोई कंजूसी नहीं है, सुख साधन जो जरूरी है घर में उनको रखने के लिए मना नहीं है, लेकिन ज्यादा दिखावा, फैशन और किसी से भेंट करके नहीं करना। इसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए, ये ऐसा करता तो मैं ऐसा करूं। बाबा कहता तेरे पास जितनी बड़ी चादर है उतने पैर पसार, है ही नहीं तेरे पास तो कर्जा लेके करोगे क्या? इसलिए जो जरूरी है जितना जरूरी उतना खर्च करो और जितना हो सकता है बचत की स्कीम बनाओ। मेरा जितना बचेगा बाबा के कार्य में सफल होगा, बाबा एक का कई गुना देने के लिए बंध जाएगा। भगवान को बांधने का एक बहुत अच्छा हमारे पास है साधन है, कहते चावल मुट्ठी दी महल मिल गए। तो अगर हम संगम पर भगवान को बांध दें कि उसके कार्य में, उसकी सेवाओं में, स्थापना में मेरा कुछ धन लगे, तन लगे, मन लगे, समय लगे, तो मैं समझता हूँ बाबा रिटर्न करने के लिए बंध जाएगा। नहीं तो कहता मैं तो बहुत होशियार, वैसे भोलानाथ हूँ लेकिन मैं बड़ा सर्राफ हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ऐसे साधारण नहीं हूँ। किसका सफल करना है किसका नहीं करना वो भी मैं जानता हूँ। अगर दिल से कोई करता है, बहुत प्यार से बाबा के लिए करता है, दिखावा नहीं करता है, गुप्त करता है, तो उसका एक का कई गुना मैं रिटर्न कर देता हूँ, उसी समय कर देता हूँ, भविष्य के लिए नहीं सोचता। और दिखावे में किया, एक किया और दस को सुना दिया कि मैंने तो इतना किया, मैं तो इतना करता हूँ, बाबा क्या करेगा, बाबा कहते तुमने जो किया हो तो ले लिया, रिटर्न कर लिया। ले उस समय वो रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ जो था वो छूट जाता है। इसलिए कभी भी धन को अगर कार्य में लगाओ भी, सेवाओं में लगाओ भी, तो बाबा हमेशा साकार में कहते थे बच्चे इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा गुप्त दान महापुण्य कहलाता है। तो ये चार बातों का संयम, समझ गए, इंद्रिय संयम, विचार संयम, धन का संयम, समय का संयम, और जो संयम से चलेगा उसकी स्वस्थिति, स्थिति जो जमानी है वो अपने आप जमती जाएगी, पक्की होती जाए, मजबूत होती जाए। यही सब बातें हलचल में लाने वाली हैं, जो परिस्थितियों का निर्माण कई बार हम खुद कर लेते हैं। परिस्थितियां सामने से भी आती हैं और हम कभी मन से भी उनको क्रिएट कर लेते हैं। मन से क्रिएट कैसे करते हैं, गहरी बात आपको सुनाता हूं। मन से कैसे क्रिएट करते हैं, परिस्थितियां कैसे क्रिएट करते हैं। एक जगह मैं अभी अभी भट्टी कराने गया था, एक माता बड़े रॉयल फैमिली की थी, बहुत रॉयल फैमिली की, पहले राजा ही घराना था, अभी वो रॉयल फैमिली की थी। उसका पति 2 साल पहले शरीर छोड़ गया, एक ही बेटा है। अब वो माता कहती मेरा योग नहीं लगता है, भट्टी के बीच में खड़े होके बोलती मेरा योग नहीं लगता है। मैंने कहा माता जी क्या बात है, सुनाएंगी, क्यों नहीं योग लगता है, इतना अच्छा वातावरण है, इतने सब भाई योगी बैठे हुए, भाई बहने योग कर रहे हैं, सब मस्ती में बाबा के प्यार में झूमे हुए हैं, तुम कहती मेरा योग नहीं लगता, कुछ तो कारण होगा, सुनाएंगी क्या कारण है। बोली हाँ सुनाऊंगी, सबके बीच में नहीं, अकेले सुनाऊंगी। मैंने बुलाया उसको अपने पास, ने सुनाओ क्या हुआ, क्यों योग नहीं लगता है। कहती भाई जी जब से मेरे पति ने शरीर छोड़ा मैं उसको तो भूल गई, चलो उसका हिसाब पूरा हो गया, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, जब स्कूल जाता है, जब तक वो नहीं आता है तब तक मेरे अंदर पता नहीं कैसे कैसे संकल्प चलते, कोई उसका अपहरण न कर ले, कोई कहीं कहीं इसका एक्सीडेंट न हो जाए, एक ही तो मेरा रतन है, एक ही तो मेरे को संभालने वाला है। हमने कहा ये कौन से संकल्प रच रही हो, परिस्थिति का आह्वान कर रही हो क्या, परिस्थितियों का आह्वान इस तरह से हम लोग कर रहे हैं जो होने वाली घटना नहीं है, सोच सोच करके उसको बुला रहे हैं। कोई ने भूल से कह दिया आपका चेहरा ऐसा लगता नहीं, पता नहीं आपको कैंसर तो नहीं है। अब है कुछ नहीं, लेकिन कोई ने मुझे कह दिया और मैं सोच सोच करके आह्वान कर रही हूं जैसे मेरे अंदर कैंसर तो नहीं है, और कैंसर घुस गया करके था नहीं, बीमारी थी नहीं, लेकिन सोच सोच करके संकल्प से उस परिस्थिति का आह्वान कर लिया। बाबा कहते तुम क्यों नेगेटिव संकल्प करते हो, जो पेपर आएगा हम पार कर लेंगे, किसी के कहने से मेरे अंदर आ जाएगा क्या, कोई के अनुमान लगाने से हो जाएगा क्या। इसलिए कभी भी परिस्थितियों का आह्वान नहीं करो, हमको स्थिति इतनी अच्छी जमानी है, इतनी सो स्थिति मजबूत हो, जिसको बाबा कहता है जैसे अंगद ने पांव जमा दिया था ना, क्या कहता था, नहीं? आ जाओ आपके पास जो सेनानी है, बड़े बड़े योद्धा बैठे हो, आके हिला के दिखाओ। और चैलेंज कितनी बड़ी थी कि तुम अगर पांव हिलाओगे तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। अब सीता पर उसका अपना अधिकार नहीं है, लेकिन उसको निश्चय कितना है कि सीता को तो कोई ले ही नहीं सकता है, और जब सीता को कोई नहीं ले सकता है तो मेरे पांव को कौन हिला सके। ये अचल अडोल स्थिति की निशानी थी, वो अचल अडोल स्थिति इतनी मजबूत थी, उसको निश्चय था कि भगवान की सीता को कोई नजर नहीं लगा सकता, कोई इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, इसलिए मैं पैर जमा रहा हूं, कोई हिला के दिखा दे। बड़े बड़े सेनानी हिलाने लगे, बहुत कोशिश की नहीं हिला, और जब रावण खुद हिलाने आया तो खुद अपना पैर पीछे कर लिया, क्यों तुम मेरे आगे क्यों झुकता है, तुम भगवान के आगे झुक जाए। ये हम सबकी श्रेष्ठ स्थितियों की यादगार है, स्थूल यादगार नहीं है। संगम पर हमने अपनी अच्छी स्थिति अचल अडोल एक रस बनाई है, इस आधार से रावण जैसे सेनानी भाई मुझे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी परिस्थितियां आए, परिस्थितियां क्या हैं, आएंगी चली जाएंगी, हम अंगद हैं, हम अचल अडोल हैं। तो अचल अडोल बनने के लिए मैं कुछ बातें आपको सुनाता हूँ, कैसे कैसे अपनी स्थिति को, जैसे कोई मकान बनाते हैं ना, कई मंजिल का ऊंचा मकान बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन को बहुत गहरा कूटते हैं। हम एक जगह गए थे, वो जो आपने शायद सुना हो, अमेरिका का जो सबसे बड़ा टावर था ना, जो तोड़ दिया था, ध्वस्त किया था, वहां पर अमेरिका वाले उससे बड़ा टावर खड़ा कर रहे थे। तो मैं 2007 में वहां गया था, तो मुझे वो स्थान लेने गए, दिखाने गए कि यहाँ टावर था और यहाँ पर अभी उससे बड़ा टावर बनने का प्लान है। तो उन्होंने बहुत बड़ी एरिया घेरी हुई थी, और एरिया तो ठीक थी लेकिन उसकी गहराई इतनी गहरी थी। मैंने कहा इतना गहरा खोदा है क्या, मकान बहुत बड़ा बना? कहते बहुत ऊंची मंजिल बनाने के लिए इसका फाउंडेशन बहुत गहरा चाहिए, कई मंजिल फाउंडेशन डालना पड़ता है। हम अपनी बहुत ऊंची स्टेज बनाना चाहते हैं तो बहुत गहरा फाउंडेशन डालना पड़ेगा। जितना गहरा होगा उतना अचल बिल्डिंग होगी, कोई भी तूफान आए, भूकंप कितने भी तीव्र गति का आए, हमारे मंजिल को गिरा नहीं सकता है। भूकंप की तरह माया आएगी। बाबा कहता जितने तुम महावीर बनोगे उतने ही बड़े रूप में तुम्हारे सामने माया आएगी। डरना थोड़ी है, तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो चेक करना मेरा फाउंडेशन इतना मजबूत है। पहला फाउंडेशन है निश्चय का, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, अपनी विजय में निश्चय कि कलप कलप मेरी विजय हुई है, कलप कलप का मैं विजयी रतन हूं, माया मुझे कुछ नहीं कर सकती और भगवान हमारा साथी है। जिसका साथी स्वयं भगवान है, सर्व समर्थ है, आंधी और तूफान आएंगे खत्म हो जाएंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन निश्चय में जरा भी संशय ना आए। कई बार ये संकल्प आ जाते हैं, बाबा तो निराकार है, वो तो परम धाम में रहता है, कहाँ किसी को मदद करता है, ऐसे तो लगता नहीं है करेगा साकार में, साकार में कोई तो चाहिए। और ज्यो संकल्प किसी साकार देहधारी के प्रति आएगा ना, बाबा किनारा कर लेगा। उसमें विश्वास की कमी हुई, देहधारी में विश्वास गया, उसमें आया, बाबा कहेगा चलो तुम, मैं छूट गया। इसलिए बहुत अंदर का विश्वास, अंदर का निश्चय कि हमारा साथी कौन है, वो कंबाइंड है हमारे साथ, अलग नहीं है। अगर उस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो ना, जो पांच समान बता रहे थे, एक सर्वशक्तिमान हूं, सदा विजयी हूं, कल्प कल्प का विजयी हूं, विघ्न विनाशक हूं, शिव शक्ति शिव पांडवपति कंबाइंड हूं, और उसका नूरे रतन हूं, मस्तक मणि हूं, इन पांचों समानों के आधार से अपने निश्चय को मजबूत करो, फाउंडेशन को पक्का कर दो, कोई हिला नहीं सकता। दूसरा, सबसे बड़े पेपर जहां आ रहे हैं वो आते हैं पवित्रता की लीकेज। हमारे अंदर जरा भी अपवित्र संकल्प विचार चलते हैं, हम समझते हैं कोई कोई पता थोड़ी चलता है, कोई देखता थोड़ी है, लेकिन उन संकल्पों का, नेगेटिव अपवित्र संकल्पों का आभा मंडल बनता है, दीवारों को भी कहते कान होते हैं। इसलिए जितना है, बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता है, मेरा मन वचन कर्म इतने स्वच्छ और पवित्र हो, मैं उस पवित्रता के सुंदर उरे में रहूं, आभा मंडल में रहूं, पवित्रता को खंडित होने नहीं देना। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसके लिए कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, धर्म है हमारा पवित्रता। ये लीकेज हो गई, स्थिति कभी अच्छी नहीं बनती। कोई कितना भी मेहनत करे, अमृत बेले उठे, मुरली क्लास करे, अच्छा संग करे, अच्छा ब्रह्मा भोजन करे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, लेकिन अगर अपनी पवित्रता की नियम को उल्लंघन कर दिया, धारणाएं मजबूत नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं बन सकती है, डामाडोल होती रहेगी, हिलते रहोगे। इसलिए इसको दृढ़ता के साथ पक्का करना। आएंगे तूफान, आएंगे विचार, आएंगे कुछ भी हो, उनको चेंज करो, अपने आप को फिर से शक्तिशाली बना करके उस पर विजय का अनुभव करो। पवित्रता का फाउंडेशन, निश्चय के साथ पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत हो। तीसरा, कोई भी दृश्य आए, सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। ना वर्णन करना है ना सोचना है, वर्णन करोगे तो भी पेपर बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्लीज स्टॉप, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ड्रामा को इतना अच्छी तरह से समझ करके चलना है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ऐसे संकल्प नहीं, लेकिन ड्रामा को समझ करके ढाल के रूप में कोई भी बात आई है बीत जाएगी, सदा नहीं रहती, लिपट गई, पेपर आया है समाप्त हो गया, 5000 साल के लिए लिपट गया, अभी कुछ नहीं होने वाला है, सोच सोच करके बड़ा नहीं करो, लंबा चलने नहीं दो, नथिंग न्यू। चौथी बात, सर्व संबंध एक बाबा के साथ दूसरे के साथ नहीं, कोई भी संबंध एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक दूसरा न कोई, अंदर से पक्का पक्का है कि बाबा ही मेरा सहारा है, बाबा ही मेरा साथी है, बाबा ही मेरा रक्षक है, बाबा 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 अनहद साथ जो है बाबा का अगर बचता रहता है तो बाबा उसको मदद के लिए बंध जाता, परिस्थिति आती है कहता बच्चे सिर्फ तुम एक संकल्प रखना, हिम्मत कभी नहीं हारना, हिम्मत तुम्हारी मदद मेरी, अगर हिम्मत हार गए तो बाबा कुछ नहीं कर पाएगा, हिम्मत का श्वास ब्राह्मण जीवन में कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, हर समय हिम्मत हिम्मत से चलना है, कोई भी बड़ी बात आ जाए ना हिम्मत नहीं हारना, निराश उदास हताश रोना शुरू नहीं करो, बात आई है खत्म हो जाएगी। कई उदाहरण है, अभी समय मेरे पास नहीं है, बहुत सी बातें आती हैं, हम लोग विदेश जाते हैं देश जाते हैं, कई ऐसे पेपर सामने दिखाई देते, ये परिस्थिति आ गई, चेहरे पर ना आ जाए, उदासी ना आ जाए, बाबा बैठा है ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, हलचल में क्यों आऊं, जोश में क्यों आऊं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों, बाबा कहता धैर्य, बहुत धैर्यता के साथ हिम्मत से काम लो, अपने आप मदद देने वाले आ जाएंगे, डर गए घबरा गए अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बाबा कहता जो घबरा गया हो गया, बहुत निर्भय होकर के निश्चिंत होकर के धैर्यता से अपने संकल्पों को एकाग्र करके बाबा की टचिंग का आह्वान करो, पेपर का पार करने का रास्ता मिल जाएगा। अगर हलचल वाले संकल्प हैं, अधैर्यता के संकल्प हैं, बाबा की टचिंग आ भी रही होगी आप कैच नहीं कर पाओगे, परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा मदद भी करना चाहे लेकिन आप हलचल में हो डिस्टर्ब हो गए हैं तो बाबा की मदद आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए हिम्मत का सांस कभी नहीं छोड़ना, दृढ़ता अंदर की, बाबा मदद करेगा ही, बंधा हुआ है। और सत्यता एक शक्ति है, कहते सच तो बिठो नच, सच्चे हैं तो कोई आंच नहीं आती, सच्चाई को कभी आंच नहीं आती है, अगर सच्चे होकर के रहेंगे बाबा मैं जो हूं जैसा हूं मैं तेरा हूं, क्यों छिपाऊं तेरे से, सच्चाई एक बहुत बड़ा बल है, तो स्वस्थिति को बनाने के लिए फाउंडेशन है, इसको मजबूत करो, निश्चय के फाउंडेशन को, सत्यता के फाउंडेशन को, नथिंग न्यू के फाउंडेशन को, पवित्रता के फाउंडेशन को, एक सहारा एक बाबा, उस फाउंडेशन को जिसने मजबूत किया है, मैं समझता हूँ उसकी स्थिति बड़ी अच्छे से अच्छी रहती है। और बाबा एक शब्द अंडरलाइन कराता है, सभी नोट करके जाना, जब अंतिम पेपर शुरू होंगे उस समय केवल केवल स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी हो करके आपका साथ देगी, आपने कितनी भी प्रॉपर्टियां इकट्ठी की हों, परिस्थिति आ जाएगी उस समय वो कुछ काम आने वाली नहीं है, वो सब ऐसे ही चला जाएगा, अगर स्थिति है आएगी बात पार हो जाएगी, मदद करेगी, तो स्थिति सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए अच्छी स्थिति में रहना, खुशनुमा स्थिति, अचल अडोल स्थिति, एक रस स्थिति, ऐसी स्थिति बना करके परिस्थितियों पर हम विजयी बन सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अंतिम वाक्य आप सभी ने ध्यान से सुना होगा कि अंतिम समय में कुछ भी काम नहीं आएगा, क्या काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वस्थिति, कैसे स्वस्थिति परिस्थितियों के बीच में भी बना करके रखे, उसकी बहुत अच्छी ज्ञान युक्त अनुभव युक्त विधियां आज भाई जी ने हम सभी के सामने रखी हैं। हम सब उन विधियों को व्यवहार में लाएंगे और स्वस्थिति से परिस्थितियों के ऊपर 100% विजयी बनेंगे।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या